In response to the prophet,
पैगंबर जोसेफ स्मिथ के पूछने पर प्रभु ने सिखाया और कोई भी इस कार्य में सहायता नहीं दे सकता, सिर्फ वो जो विनम्र हो, प्यार से भरा हो, जिसके पास भक्ति, आशा और उदारता हो, सभी बातों में संयम रखता हो, चाहे जो उसे सौंपा जाए। ये आदेश सभी बातों में संयम रखने का हम सभी को लागू है। संयम क्या है और प्रभु हमें संयम रखने के लिए क्यों कहता है? इसकी एक अधूरी व्याख्या हो सकती है, खाने और पीने में नियंत्रण रखना। हाँ, संयम रखने का मतलब विवेक के बोल पालने में एक अच्छा नुस्खा हो सकता है। संयम की व्याख्या हो सकती है क्रोध से संभालना या अपना संतुलन नहीं खोना। पर संयम का ये मतलब धर्मग्रंथों में संयम के इस्तेमाल का सिर्फ एक अंग है। आत्मिक ढंग से संयम का ईसा मसीह एक दैवी गुण है। वो चाहते हैं कि हम सभी इस गुण को का विस्तार करें। सभी बातों में संयम पाना ये एक आत्मिक भेंट है जो पवित्र आत्मा द्वारा उपलब्ध है। जब धर्मदूत पॉल ने गलेशियन लोगों को कुछ आत्मिक फलों के बारे में खत में वर्णन दिया, उसने प्यार, सुख, शांति, सहनशीलता, कोमलता, अच्छाई, भक्ति, नम्रता और संयम का उल्लेख किया। पॉल ने टाइटस को खत में ये गुण बताए जो किसी भी बिशप को इस कार्य में सहायता देने के लिए जरूरी है। उसने कहा, बिशप को स्वयं इच्छा पालक या जल्द क्रोधित नहीं होना चाहिए, पर संयम रखना चाहिए। संयम रखना है सभी बातों में संतुलन रखना या खुद पर काबू पाना। जब छोटा अल्मा गिडियन में सिखा रहा था, उसने कहा, मैं यकीन करता हूँ कि तुम्हारे दिल घमंड से उठे नहीं हैं। हाँ, मैं यकीन करता हूँ कि तुम्हारे दिल दुनिया की दौलत और घमंडी बातों पर नहीं बसे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम नम्र होकर आज्ञाकारी और कोमल बनो, समझाने में आसान, धीरज से भरे और सहनशीलता से भरे, सभी बातों में संयम रखते हुए। इसके बाद के एक संदेश में आलमा ने सिबलन को सिखाया, घमंड से मत भर जाओ, बल्कि हमें सभी बातों में परिश्रमी होकर संयम रखना चाहिए। संयम रखने का मतलब है सावधानी से अपनी चाहत और उम्मीदों की जांच करना, नेक उद्देश्यों के लिए परिश्रम करके धैर्य रखना। कुछ साल पहले मैं काम से गाड़ी चलाते घर लौट रहा था, जब एक बड़ी ट्रक जो विरुद्ध दिशा में यात्रा कर रहे थे ने अपना एक टायर खोया। टायर हमारे लेन के बीच की बाधा के ऊपर से उड़ा। वो फिर मेरे रास्ते पर उछलते आया। गाड़ियाँ दोनों तरफ मुड़ रही थी। वाहन चालकों को पता नहीं पड़ रहा था कि टायर किस तरफ अगली बार मुड़ेगा। मैं बाईं ओर मुड़ा जब मुझे दाहिने ओर मुड़ना चाहिए था और टायर ने अपनी आखिरी छलांग मेरे शीशे पर ली। एक दोस्त ने मेरी बीवी को दुर्घटना के बारे में बताया। उसने बाद में मुझे बताया कि उसका पहला ख्याल धार वाली शीशे के घाव का था। मैं अवश्य कांच के टुकड़ों के साथ लादा गया, पर मुझे एक भी खरोंच नहीं आया। वो इस वजह से था कि मेरी गाड़ी का शीशा संयम कांच से बना था। संयम कांच को संयम फौलाद की तरह एक नियंत्रित प्रक्रिया से गर्म किया जाता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। इस कारण जब संयम कांच को तनाव मिलता है और वो टूटती है, वो आसानी से घाव वाले टुकड़े नहीं होते जो घाव पहुंचाते हैं। वैसे ही एक संयम मानस, एक जो विनम्र और प्यार से भरा हो, उसके पास अधिक आध्यात्मिक शक्ति होती है। अधिक आध्यात्मिक शक्ति की वजह से हम स्वयं नियंत्रण का विस्तार कर सकते हैं और निग्रह से जी सकते हैं। हम अपने क्रोध या गुस्से को और अपनी व्यस्तता और गुरु को बस में लाना सीखते हैं और संयम सीखते हैं। अधिक आध्यात्मिक शक्ति से हम इस काल की भयंकर जातियों से और हानिकारक लतों से सुरक्षित रख सकते हैं। हम सभी मन की शांति सोचते हैं और हमारे परिवारों के लिए सुरक्षा और सुख चाहते हैं। अगर हम इस पिछले साल के आर्थिक मंदी में कुछ भलाई देखना चाहते हैं, तो शायद हम उन मुसीबतों से सीख सकते हैं जो हम में से कुछ लोगों ने सही है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सुरक्षा या सुख घर खरीदने से या अधिक चीज़ें इकट्ठा करने से नहीं मिलती। अगर हमारा कर्ज बचत और आमदनी से अधिक है, हम एक अधीर और असंयमी दुनिया में जीते हैं जो अनिश्चितता और विवाद से भरी है। वो उस धर्म परिवर्तित लोगों के समूह जैसे है जिन्हें जोसेफ स्मिथ ने अपने घर के पास देखा था। वह 14 साल का था जब उसने सवालों का जवाब खोज रहा था। जोसेफ ने कहा, उनकी सभी की इच्छा और भावनाएं एक दूसरे की तरफ जो थी, अगर वो थी भी तो वो खो गई बहस और संघर्ष में। हमारे परिवारों को सुरक्षा खुद पर काबू पाना सीखने से, जो दुनिया की जातियां टालने से, सभी बातों में संयम रखने से आती हैं। मन की शांति ईसा मसीह पर अधिक भक्ति से आती है। सुख मिलता है उन वचनों का दृढ़ आज्ञा पालन से जो हम बपतिस्मे के समय और प्रभु के पवित्र मंदिरों में लेते हैं। हमारे संयम का ईसा मसीह से अच्छा नमूना कौन है? जब हमारे दिल बहस या वाद विवाद से खोदित होते हैं, उद्धारकर्ता ने सिखाया हमें पछताना चाहिए और छोटे बच्चे की तरह बनना चाहिए। भाई के साथ समझौता करके उनके पास पूरी मनोकामना के साथ जाना चाहिए। जब और लोग क्रूर होते हैं, ईसा ने सिखाया मेरी करुणा मुझसे परे नहीं होगी। जब हम मुसीबत का सामना करते हैं, उन्होंने कहा पीड़ा में धैर्य रखो, बुरा कहने वालों को फिर बुरा मत कहा, नम्रता से तुम्हारे घर पर शासन करो और अटल रहो। जब हम पर अत्याचार किया जाता है, दिलासा लो ये जानने में कि उसके साथ भी अत्याचार हुआ था, वो पीड़ित हुआ फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने यकीनन हमारे दुख सहे हैं और हमारे शोक उठाए हैं। जब ईसा मसीह जो सबसे श्रेष्ठ था हमारे लिए पीड़ित हुआ, इतना कि उसके हर रोमकूप से लहू बहा, उसने न तो क्रोध जताया ना ही पीड़ा से कुछ बुरा कहा। उसने बेमिसाल नियंत्रण या संयम के से खुद के बारे में नहीं पर तुम्हारे और मेरे बारे में सोचा और फिर विनम्रता से और प्यार के लफ्जों से उसने कहा, फिर भी गौरव पिता को मिलो और मैंने अपना हिस्सा और तैयारी इंसान के बच्चों की ओर पूरी की है। इस पिछले साल मुझे सम्मान मिला है गवाही देने का हमारे उद्धारकर्ता के अस्तित्व के बारे में और सुसमाचार की बहाली के बारे में एशिया भर में के कई संतों और दोस्तों को। उनमें से लगभग सभी पहली पीढ़ी के संत हैं जो गिरजे की अघाड़ी में रहते हैं। उनकी ये अंतिम दिनों की सैर हमें बीते हुए काल के प्रारंभिक अंतिम दिनों के संतों की याद दिलाती है। एशिया की अद्भुत विभिन्नता में ईसा मसीह के अंतिम दिनों के संत इस विशाल जनसंख्या के सिर्फ एक अंश हैं। मुझे अब बढ़िया अनुमान आया है मसीह जैसे संयम के गुण का। मैं उन संतों के प्यार से प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे उनके नमूने से विनम्र और प्यार भरा होने का मतलब सिखाया है, सभी बातों में संयम रखने का जो भी उन्हें सौंपा जाए, उन्हें के द्वारा मैं ईश्वर का उनके बच्चों की ओर प्यार और अच्छी तरह समझ पाया हूँ। मैं अपना बयान देता हूँ कि हमारा मुक्तिदाता जीवित है। उनका संयम का तोहफा ईश्वर के सभी बच्चों को उपलब्ध है। ईसा मसीह के नाम से आमीन।